तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति रविवार इस प्रीति भोज कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य से विभूषित श्री राधा रास बिहारी जी के चरण कमलों में बैठकर श्री गौर निताई एवं राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठकर उन्हीं के विषय में श्रवण करने का यह एक अद्भुत अवसर प्राप्त हुआ है। भक्तों, इस जगत में यदि हम सबको सुखी होना है, प्रायः संसार में सब लोग दुखी हैं। संसार दावा नललीढ़ लोक, संसार दावा नले दिया निशी हिया जले। सब लोग रात दिन संसार के दुखों में जल रहे हैं, दग्ध हो रहे हैं, तप्त हो रहे हैं। ऐसे दुखी हो रहे जीव, ये संसार के जीव को यदि सुखी होना है तो सबसे बड़ा कार्य है भगवान के चरणों में प्रेम करना। जब तक भगवान का सनातन अंश या जीव भगवान से प्रेम नहीं करने लगता है, तब तक इस जगत में रहकर दुखी होता है। फिर चाहे उनके पास कितना भी धन हो, संपत्ति हो, गाड़ी बंगले हो, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता तब तक वह व्यक्ति दुखी रहता है। तत्वतः आत्मा का स्वरूपगत मूलभूत स्वभाव है प्रेम करना। यह आत्मा जो है प्रेम किए बिना नहीं रह सकती है। इस जगत में हम सब लोग प्रेम करते हैं, यहां तक कि पशु पक्षी भी अपनी अपनी बिरादरी वालों से प्रेम करते हैं। प्रेम करना यह आत्मा का स्वभाव है, परंतु तकलीफ यह है कि जिससे प्रेम करना चाहिए उसे प्रेम नहीं करते हैं। आज किसे पूछा जाए आप प्रेम करते हैं, बोले हां मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है, पत्नी है, पुत्र है। परंतु भक्तों, आज हम जिससे प्रेम करते हैं यह इस जगत का पंच महाभूत का अंश है, और हम लोग सच्चित आनंदमयी भगवान के चिन्मयी अंश हैं। एक चिन्मयी वस्तु का प्रेम जड़ वस्तु के साथ संभव नहीं है। भगवान का यह सनातन अंश किसी नाशवंत वस्तु से पूर्ण प्रेम और पूर्ण सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि हमें सच्चा प्रेम करना है, पूर्ण प्रेम करना है, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना होगा। चिन्मयी, सच्चित आनंदमयी यह आत्मा का प्रेम एकमात्र परमात्मा के साथ ही संभव है। और इस जगत में जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं, निश्चित भगवान उसे अपनी कृपा देते हैं। तो भक्तों, दुखों से मुक्त होने के लिए भगवान से प्रेम करना है, परंतु भगवान से प्रेम उत्पन्न करने के लिए क्या करना है, भगवान की कथा सुनना है। जब तक हम भगवान के विषय में सुनेंगे नहीं, तब तक भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा नहीं। भगवान के साथ प्रेम करना चाहते हैं तो भगवान के विषय में ज्यादा से ज्यादा सुनिए। नित्यम भागवत सेवया, अनेकों श्लोकों में कहा गया है, श्रुत्वा ज्ञानम अवाप्नोति, सुनने से ही ज्ञान होता है। और भक्तों, दशम स्कंद में देवी रुक्मणी इजहार करते हुए कहती हैं, रुक्मणी जी भगवान को पत्र लिखती हैं कि हे कृष्ण, मैं आपके बिना जी नहीं सकती हूं, मेरा विवाह शिशुपाल के साथ होने जा रहा है, परंतु आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती हूं, मैं आपसे दिलो जान से प्रेम करती हूं। मानो भगवान ने फोन करके पूछा होगा, मोबाइल लगाया होगा कि देवी रुक्मणी, न तो आज के पहले हम कभी मिले हैं, न बस स्टॉप पर मिले, न रेलवे स्टेशन पर, देवी रुक्मणी न तो आज तक मैंने तुम्हें देखा, न तुमने मुझे देखा, और न तो मोबाइल आदि फोन में हमारी बातचीत हुई। बिना देखे बिना मिले तुम्हारा इतना प्रेम मुझसे क्यों हो गया, कारण क्या है? तब देवी रुक्मणी लिखते हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, हे भुवन सुंदर, हे कृष्ण, मैंने आपको देखा नहीं लेकिन आपके विषय में नारद इत्यादि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मुख से कथाएं सुनी है, आपके विषय में सुना है, और आपके विषय में सुनते सुनते आपके साथ यह प्रेम उत्पन्न हो गया है। इतना प्रेम उत्पन्न हो गया है कि अब आपके बिना मैं जी नहीं सकती हूं, नहीं जी सकती हूं। सुनने से भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न होती है, तो भक्तों ज्यादा से ज्यादा भगवान के विषय में सुनना चाहिए। वैसे हमारे प्रवचन कई जगह पर होते रहते हैं, कृष्ण लीला करते हैं, भगवद गीता भी करते हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला भी करते हैं, लेकिन जब इस जुहू मंदिर के प्रांगण में आते हैं तो स्वाभाविक भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके भगवान राम के विषय में बोलने का लोभ हो जाता है। तो आइए, अब जीवन की कुछ क्षण हमारे पास है, तो इन कुछ क्षण में हम भगवान श्री रामचंद्र के विषय में कथा श्रवण करें। मैंने ये सुना, आज सुबह आप लोगों ने चैतन्य महाप्रभु के विषय में श्रवण किया। आइए भगवान श्री रामचंद्र की एक छोटी सी कथा आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और ये कथा है रामायण के अद्भुत पात्र। रामायण में वैसे तो बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन हृदय को छूने वाली और मन को मनोरंजन देने वाली है, मन को आनंदित करने वाली कथा है रामायण में केवट की कथा। समंदर के किनारे हम सब बैठे हैं, केवट की याद स्वाभाविक हमारे मन में स्मरण हो सकती है। तो भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, एक दिन की बात, पुराणों में एक छोटी सी कथा है, भगवान विष्णु क्षीर सागर में बहुत सुंदर अनंत शेष की शैया में शयन कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनके चरण का सम्मान कर रही थी, और उस समय क्षीर सागर में से, उस समुद्र में से एक कछुआ बाहर निकला, और कछुए ने सोचा कि अब यहां पर आया हूं तो भगवान के चरणों को स्पर्श करके जाऊं। तो जैसे ही कछुआ भगवान के चरणों को स्पर्श करने गया, लक्ष्मी जी ने उसे दूर कर दिया, नहीं चलो भागो, क्योंकि भगवान के चरणों की सेवा लक्ष्मी जी करती है। वो कछुआ दूसरी बार आया, लक्ष्मी जी ने भगा दिया, चलो भागो। तीन चार पांच बार वह कछुआ आया, लक्ष्मी जी भगाती रही। तब कछुआ ने इतना ही कहा, प्रभु अपनी गली में मुंबई में रहने वाले को इशारा काफी है। भागवत में यह वर्णन है, जब कंस ने अनेकों असुरों को ब्रज वृंदावन में भेजा, अघासुर बकासुर, और ये असुर जब वृंदावन में जाते थे तो यह कहते थे, महाराज कंस चिंता मत करो, हम कृष्ण को मार कर आएंगे। लेकिन जितने लोग गए ये सब लोग की लाश वापस आई एम्बुलेंस में। तब कंस बहुत चिंतित हो गया, और देवता लोग भी चिंतित हो गए कि इस प्रकार से यदि कृष्ण सभी असुरों को मारते रहे तो कंस को कब मारेंगे, कैसे भी करके कृष्ण को मथुरा बुलाना है, क्या करे क्या करे। जब कोई सहारा नहीं मिला तो देवताओं ने नारद मुनि को चुना, बोले नारद जी आप हमारा एक काम कर दीजिए। बोले क्या? बोले कृष्ण को वृंदावन से मथुरा लाना है, और ये काम आप ही कर सकते हैं। बोले ऑलरेडी मेरा नाम बिगड़ा हुआ है, नारद बोले दोनों ओर बजने वाला। जब देवताओं ने बहुत विनंती की, नारद मुनि कंस के पास आए, कंस ने बहुत स्वागत किया, और कंस बिल्कुल सिर पर हाथ देकर बैठा था, चिंतित था। नारद जी ने कहा, कंस महाराज तुम चिंतित क्यों हो? तब कंस कहते हैं कि मैं जितनों को भेज रहा हूं सबकी लाश आ रही है, तब भागवत में वर्णन है, नारद जी ने कहा महाराज आप चिंता मत करो, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। आपने जितने लोगों को भेजा उनकी गली में भेजा, एक बार उनको यहां बुला कर देखो, आपका साधारण अनुचर भी उसे मार सकता है। कंस ने बोला अब तक ये बात समझ में नहीं आ रही थी। तुरंत अक्रूर जी को बुलाया, जाओ मेरा नया रथ लेकर जाओ और कृष्ण बलराम को बुला लो। नारद जी ने कहा नारायण नारायण मेरा काम हो गया, चले गए। खैर मुझे तो ये घटना याद आ गई रामलीला से। भगवान विष्णु सोए हुए थे, समंदर से वह कछुआ आया और भगवान के चरण को स्पर्श करने गया। लक्ष्मी जी ने चार पांच बार भगा दिया, तब उस कछुए ने यही कहा प्रभु अपनी गली में आप अपने धाम में हो इसलिए इस प्रकार से मुझे चरण स्पर्श नहीं करने देते हो, लेकिन आप कभी ना कभी तो पृथ्वी पर आओगे और जिस दिन आप पृथ्वी पर नर लीला धारण करोगे उस दिन याद रखना मैं आपके इसी चरण को छूऊंगा चूमूंगा और इसके जल का चरण तक पान कर लूंगा। अब भक्त के मुख से जो वचन निकल जाता है भगवान को पूर्ण करना ही पड़ता है। भगवद गीता में कृष्ण खुद प्रतिज्ञा नहीं करते हैं, अर्जुन को कहते हैं अर्जुन कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो कि कृष्ण के भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, उनके भक्त का वचन कभी विफल नहीं जाता है। तो अर्जुन ने कहा कृष्ण तुम खुद कर लो ना, तुम मुझसे क्यों प्रतिज्ञा बुलवाना चाहते। तो आचार्यगण लिखते हैं कृष्ण ने कहा अर्जुन मैं तो कभी कभी मेरी प्रतिज्ञा को तोड़ भी देता हूं। भगवान का तो क्या है, जब चाहे प्रतिज्ञा ले ली जब चाहे तोड़ दिए। महाभारत में प्रतिज्ञा थी हाथ में शस्त्र धारण नहीं करूंगा और देखा कि मेरा भक्त कुछ विपरीत परिस्थिति में फंसा है और पितामह भीष्म सामने खड़े हैं, यदि कुछ नहीं करूंगा तो पितामह भीष्म के तीक्ष्ण बाण अर्जुन को बींध डालेंगे। उस समय भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया, हाथ में शस्त्र रथ का चक्का धारण करके पितामह भीष्म के ऊपर चला दिया। इसीलिए तो संतों को कहना पड़ा प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा है? उनको अपने मान की नहीं पड़ी है, भगवान को अपने मान और सम्मान की नहीं पड़ी है। कुछ भी हो जाए मेरा नाम बिगड़े चाहे कुछ भी हो लेकिन मेरे भक्त का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। नमे भक्ता प्रणश्यति, और यदि मेरे भक्त का बाल बांका हो गया तो ये भगवान की। एक भक्त बहुत सुंदर कहते हैं दीन दयाल सुनी जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहाई के जाऊं कहाई अब तेरे ही नाम की फैट कसी है। हे प्रभु मैं बहुत चिंतित था टेंशन में था लेकिन जिस दिन से मैंने सुना है कि आपका नाम दीन दयाल है उस दिन से टेंशन फ्री हो गया। आज मुझे कोई टेंशन नहीं कोई चिंता नहीं, क्यों? क्योंकि आप दीन दयाल हो, आप दीनों के नाथ हो दीनहीन के आप स्वामी हो। तो जिस दिन से मैंने सुना है दीन दयाल सुनी जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, उस दिन से मैंने मेरे मन में ये ठान लिया है। क्या ठाना है? तेरो कहाई के जाऊं कहाई अब तेरे ही नाम की फैट कसी है। हे कृष्ण अब मैं आपका हूं, आपको छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। कभी कभी होता है जो कृष्ण की भक्ति करते हैं ना उसकी बहुत हंसी होती है उपहास होता है। अब मैं आपको एक सत्य घटना सुनाऊं। हमारे श्री राधा गिरधारी मंदिर में किसी ने एम्बुलेंस डोनेशन में दी। अब हमको तो कुछ भी चलता है, इस्कॉन में कोई कुछ भी दे दे हम ले लेते हैं। एम्बुलेंस दिया तो ले लिया, नो प्रॉब्लम। तो एम्बुलेंस आई तो अब एम्बुलेंस का क्या करे, तो उससे दो काम करते थे हम लोग, या तो वासी सब्जी लाने के लिए भेजते थे और जब नगर संकीर्तन करना होता था तो कुछ भक्त उसमें बैठकर जाते थे। तो एक समय की बात उस एम्बुलेंस में कुछ भक्त बैठे, भक्तों की मंडली बैठी और हमने सोचा कि अब जैसे आप लोग हाईफाई एरिया में रहते हो वैसे बोरीवली में टीपीएस रोड थोड़ा हाईफाई माना जाता था पहले, तो बोले उस एरिया में हम लोग जाएंगे। तो एम्बुलेंस है, कांच बंद है, और भक्त तो जब कीर्तन शुरू करते हैं तब कंट्रोल में नहीं रहते हैं, दे धनाधन हरि बोल शुरू करने लगे। अब रोड पे जितने भी लोग देख रहे हैं, अरे बाप रे एम्बुलेंस में सब क्या हो रहा है, तो कुछ लोगों ने सोचा पागल खाने से एम्बुलेंस आ गई है। धीरे धीरे करके वो एम्बुलेंस गई टीपीएस रोड पर, और कई लोगों को डाउट हो गया। और उतने में जब एम्बुलेंस वाले ने उतर कर पीछे से दरवाजा खोला और सब लोग उतर कर नाचने लगे गाने लगे, किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, बोले पागल खाने से एक एम्बुलेंस भागकर आई है, ये पागल आए हैं उनको जल्दी कंट्रोल में लो। तो कभी कभी होता है भगवान के भक्तों को कुछ लोग पागल भी कह देते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, लेकिन ये भक्त भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, दीन दयाल सुनी जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहाई के जाऊं कहाई अब तेरे ही नाम की फैट कसी है, तेरो ही आसरो एक मलोक नहीं कोई मन में दूजी जसी है, हे हो मुरारी पुकारी कहूं अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, हे कृष्ण जगत के लोग यदि मुझ पर हंसते भी हैं तो ये मुझ पर नहीं ये आप पर हंसते हैं, क्योंकि मैं आपका हूं मैं आपका भक्त हूं, इसलिए अब दुनिया वालों को मुझ पर हंसना या रोना ये आपके ऊपर है। भगवान के भक्त सर्वस्व भगवान को समर्पित हो जाते, छोड़ देते हैं भगवान। कछुए ने कहा कि हे प्रभु आप जब पृथ्वी पर आओगे मैं आपके चरण को नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने अपने भक्त की इच्छा पूर्ण की। भगवान श्री रामचंद्र के वनवास काल में आप सब जानते ही हैं बहुत दुखद घटना हुई, सारी अवधपुरी उस दिन रो रही थी। राजा दशरथ ने सुमंत्र जी को भेजा, आप राम को 2-5 दिन घुमाकर वापस लेकर आओ। तमसा नदी के तट पर सारी प्रजा सो गई और भगवान श्री रामचंद्र सबको चखमा देकर वहां से निकले और श्रृंगवेरपुर पहुंच गए। वहां पर रुके, सुमंत्र जी को विदाई की और श्रृंगवेरपुर से भगवान श्री रामचंद्र निषाद राज के साथ जब आगे बढ़े तो भगवान श्री रामचंद्र को अब वन के मार्ग में जाना था, तो आगे जाने के लिए बीच में गंगा नदी पड़ रही थी। बीच में गंगा नदी थी और वैसे भगवान चाहे तो गंगा क्या समुद्र को पार कर सकते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम है, नर लीला कर रहे हैं, इसलिए मनुष्य की भांति उनका कर्म है, उनकी लीला है। बीच में गंगा नदी पड़ी तो भगवान दूर दूर तक देख रहे हैं लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। भगवान ने सोचा कोई नौका चलाने वाला मिल जाए, नौका में बैठकर मैं लक्ष्मण और जानकी ये तीनों गंगा को पार करें। भगवान श्री रामचंद्र ने दूर दूर उस किनारे दूसरे पार एक नाविक को, पता है रिक्शा वाले कभी हम लोग बहुत जल्दी में होते हैं, रिक्शा पकड़नी होती है तो रिक्शा वाला खुद पीछे बैठता है और सोया हुआ होता है, चलाने के मूड में नहीं होता है। तो वैसे ये केवट चलाने के मूड में नहीं था, ऐसे ही आराम से बैठा था, भगवान ने दूर से इशारा किया। गोस्वामी जी लिखते हैं मांगी नाव न केवट आना, भगवान ने दूर से इशारा किया तो दूर से केवट कहते हैं। अब ऐसे इशारे में बात चल रही है, रामायण में वर्णन है तो इशारे में भगवान ने कहा क्या प्रॉब्लम है, तो केवट ने दूर से ही कहा आप में नहीं। भगवान ने कहा समझ में नहीं आ रहे, थोड़े निकट आकर बात करो। मांगी नावन केवट आना कही तुम्हार मरमु में जाना है। भगवान ने कहा तकलीफ क्या है तुम्हें, तुम यहां निकट आना क्यों नहीं चाहते थे। केवट ने कहा देखिए प्रभु तकलीफ आप में नहीं है, आपके शरीर में भी तकलीफ नहीं है, प्रॉब्लम जो है आपके चरण में भी नहीं है, आपके चरण के नीचे जो रज लगी हुई है उस रज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है, बोले मैंने सुना है गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुबीर। प्रभु मैंने सुना है कि गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या पत्थर बनकर बैठी थी, पत्थर बन चुकी थी, लेकिन जैसे ही आपकी चरण की रज उस पत्थर के ऊपर लगी, वह बहुत सुंदर नारी बन गई। नारी भी बनी, लेकिन कैसी सुंदर, वहां वर्णन है, है? पर सदपद पावन शोक नसावन प्रकट भई तप पुंज सही। उस छंद में वर्णन करते हैं कि बहुत सुंदर रूप धारण करके वह अहल्या प्रकट हो गई। केवट कहते हैं, प्रभु आपके चरणों में जो रज है ना, पत्थर के ऊपर पड़ती है तो वह स्त्री बन जाती है, और मेरी नौका तो काष्ठ की बनी हुई है, लकड़े की बनी है, निश्चित वह तो स्त्री बनी जाएगी। प्रभु देखिए, ये नौका ही मेरी जीविका है, इसी से ही मेरे पेट का और मेरे परिवार का पालन होता है, और आपकी चरण की रज नौका के ऊपर पड़ गई और स्त्री बन गई तो हमारी जीविका, आप हमारे पेट पर लात मत मारो, मैं आपको नौका में नहीं बिठा सकता हूं। बोले भगवान रामचंद्र ने कहा कि स्त्री बन जाए तो अच्छी बात है ना, संसार में कई लड़के घूमते हैं, अच्छी लड़की नहीं मिलती है, शादी नहीं होती है, है? आचार्यगण वर्णन करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र ने जब उस पत्थर के ऊपर अपना चरण रखा और भगवान राम के चरण रज से वह पत्थर स्त्री बन गई, तब दंडकारण्य आदि वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, वे ऋषि मुनि पत्थर ढूंढने लगे। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, बोले वो ऋषि मुनि पत्थर, बोले कोई काला पत्थर, कोई सफेद पत्थर। कारण क्या था? सबको पता चल गया कि भगवान श्री रामचंद्र हमारे दंडकारण्य आदि वन में आने वाले, तो आने वाले तो पत्थर का क्या करे। ऋषि मुनियों ने मन में सोचा कि यार मरकट वैराग्य तो हमने ले लिया, अब उस समय भाव आ गया तो घर छोड़ दिया, पत्नी बच्चे धन संपत्ति ऑफिस सब छोड़ दिया, लेकिन वन में आने के बाद पता चला कि यार शादी हुई होती तो अच्छा था। कुछ लोग होता है बहुत लंबे समय के बाद विवाह करने का मन, तो जिस ऋषि मुनियों को विवाह करने की इच्छा थी, तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी जटा है, लंबी लंबी दाढ़ी है, न घर का ठिकाना न रहने का ठिकाना, कौन उनको लड़की देगा। तब ऋषि मुनियों ने सोचा भगवान श्री रामचंद्र हमारे जंगल में आने वाले हैं, और वो जिस पत्थर के ऊपर पांव रखते हैं वो स्त्री बन जाती है। गोरी स्त्री चाहिए तो गोरा पत्थर ढूंढो, काली चाहे तो काला पत्थर, पतली चाहे तो पतला पत्थर, मोटी चाहे तो मोटा पत्थर। अतः ये बात पूरे जगत में विदित हो गई थी कि भगवान राम के चरणों में एक अद्भुत रज है। तो इस प्रकार से केवट ने कहा, प्रभु अब आप किसी और रिक्शा वाले को ढूंढ लो, सॉरी नाव वाले को ढूंढ लो, मैं आपको मेरी नाव में नहीं बिठा सकता। आचार्यों ने बहुत प्रश्न उठाए भक्तों, क्या उस समय केवट की बदले है और कोई नाविक वहां पर नहीं होगा, क्योंकि जहां नदी होती है वहां तो बहुत सारी नौका होती है, बहुत सारे नाविक होते हैं, क्या केवट अकेला था। तो आचार्यों की लेखनी में, उनकी टीकाओं में लिखा गया है कि हां उस श्रृंगवेरपुर में गंगा में हजारों केवट थे, हजारों नौकाएं चलती थी, लेकिन केवट को जब पता चला कि भगवान श्री रामचंद्र कल यहां पर आने वाले हैं, तो केवट ने भूतकाल में अपने कार्य से अपने गांव के राजा को, निषाद राज को, केवटों के जो राजा होते हैं उनको प्रसन्न कर लिया था। भूतकाल में कैसी घटना इतिहास में घटी थी, तो निषाद राज ने केवट को कहा था, केवट मैं तुम्हारे इस कार्य से प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। तब केवट ने कहा था, प्रभु आज तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, समय आने पर मांग लूंगा। तो केवट को जब खबर मिली कि कल भगवान आने वाले हैं, तुरंत केवट जो है, पहले तो ये घटना संतगण करते हैं कि केवट घर पर रात को टेंशन लेता है कि इतने सारे नाविक होंगे, भगवान आएंगे, और मेरी नाव भी टूटी फूटी, मेरी नाव में भगवान थोड़ी ना बैठेंगे। तब उसकी पत्नी याद कराती है, प्रभु याद करो, निषाद राज ने तुमको वचन दिया है। केवट ने कहा, भाग्यवान तुम तो बुद्धिमान हो, केवट रात तो रात निषाद राज के पास चला गया, रात को 12 बजे घर का दरवाजा खटखटाया, खटखटाया, और लुंगी पहनकर निषाद राज बाहर आए, बोले क्या हुआ? केवट ने कहा देखो प्रभु, आपने मुझे कहा था ना वचन मांगना, तो मैं वो वचन मांगने आया हूं। बोले रात को 12 बजे? बोले हां। बोले क्या चाहिए? कहा प्रभु आप एक काम करो, आप मुझे मेरी इच्छा पूर्ण करना चाहते हो ना, तो कल रिक्शा वालों की स्ट्राइक करा दो, सॉरी नाव वालों की स्ट्राइक करा दो। ये तो यूनियन के मेंबर थे, निषाद राज माने राजा थे। बोले स्ट्राइक बिना न लेना न देना, बोले ये मेरी इच्छा है और पूरी स्ट्राइक होनी चाहिए। कोई नाविक वहां पर नहीं दिखना चाहिए, किसी की नौका वहां पर नहीं दिखनी चाहिए, मैं अकेला कल के दिन नाव चलाऊंगा। तो उन्होंने वचन दिया। अब राजा के कहने पर सभी केवट रातों रात वहां से हट गए। इसीलिए गंगा के तट पर एक ही केवट था, एक ही व्यक्ति था। यह है शास्त्र को तत्व से जानना। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योविति तत्वतः। किसी भी कथा के गहराई में जाकर, और भी बहुत सारी गहराई, समय के अभाव में इतना ही समझिए, केवट भगवान के सामने खड़ा है और भगवान बार बार केवट को कह रहे हैं केवट जरा पार करा दो ना। केवट है किसी कीमत पर नहीं, भगवान दोनों हाथ जोड़ रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भगवान वामन रूप धारण करके 3 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिए, वही भगवान आज गंगा को नापने के लिए केवट से निहोरा कर रहे हैं, केवट के चरणों में विनंती कर रहे हैं। भगवान की लीला भी अद्भुत है। जिस भगवान का एक नाम भी यदि कोई जप लेता है, जासु नाम जपी सुन हूं भवानी, भव बंधन कट हूं नर ज्ञानी, जिस भगवान का एक बार भी कोई नाम ले लेता है वह संसार सागर से तर जाता है, वही भगवान आज गंगा को तरने के लिए, पार करने के लिए केवट के चरणों में विनंती कर रहा है। भक्तों ये भगवान की अद्भुत लीला है। भगवान अपने भक्तों को आनंद देना चाहते हैं, रस प्रदान करना चाहते हैं। और देवी कुंती तो इस कथा का, भगवान की लीला का तात्विक निरूपण करते हुए कहती है कि हे कृष्ण, आप इस संसार में अवतार धारण करते हो, इसका एक ही कारण है कि इन अवतारों से, इन लीलाओं से भविष्य में आने वाली जनता जब आपकी इन लीलाओं को सुनेगी, पढ़ेगी, तब उनका हृदय, उनका मल और उनका दुख दूर हो जाएगा और वह व्यक्ति इसी जन्म में आपके धाम को प्राप्त कर लेगा। देवी कुंती ने यहां तक कह दिया, सुनवंती गायंती गिणंती भिक्ष्णस स्मरंती नंदंती तवे हितम जना। हे कृष्ण, इस संसार में जो लोग आपकी कथा सुनते हैं निश्चित आपके धाम को प्राप्त करते हैं। सुनवंती और फिर कहते हैं गायंती। देखिए देवी कुंती जो लाइन में बता रही हैं उसके अनुसार इस संसार में मान लो प्रश्न हो कि भगवान के धाम में सबसे पहले कौन जाएंगे, कथा बोलने वाला के सुनने वाला, देवी कुंती कहती है कथा सुनने वाला पहले भगवान के धाम। तो भाई आप हमारा ध्यान रखना, आप लोग जाओगे तो हम वक्ता का कब सुनवंती गायंती, गाने वाले बाद में जाते हैं, कथा सुनने वाले पहले भगवान के धाम। अब तत्कालीन मुझे एक घटना याद आ गई। कभी कभी देखा जाता है कि प्रवचन करने वाले बड़ी मेहनत करते हैं और बड़ी मेहनत करने के बाद प्रवचन इत्यादि करते हैं और फिर भी श्रोता लोग सोते रहते हैं, तो इसमें लॉस श्रोता का नहीं है, बेचारे वक्ता का हो जाता है, सुनने वाला तो पहले ही चला जाता है। एक समय की बात, एक बहुत बड़े वक्ता थे, भागवत कथाकार, जो लगभग 1008 कथा कर चुके थे। उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद सीधा वैकुंठ में गए, सुनवंती गायंती गाते थे कथा, वैकुंठ में गए तो जय विजय जो द्वारपाल थे उन्होंने उसको कहा कि आप वेटिंग में बैठो, चलो साइड में बैठो। बोले मैं वक्ता हूं, आप पैम्पलेट पढ़ो, पृथ्वी में कितनी कथा कर चुका हूं मैं। बोले जो भी हो, कथाकार हो, वक्ता हो, जो भी हो, वैकुंठ में आ गए ना, चलो अब वेटिंग में बैठो आप। बोले ये तो बैठे बैठे सोच रहे थे, यार यहां कथा किया, वहां किया, कभी कभी जुहू मंदिर में भी गया था। मेरे जैसा कोई सोचता होगा। उतने में खाकी वर्दी में एक BHT बस का ड्राइवर आया और जैसे BHT बस का ड्राइवर आया, जय विजय ने कहा चलो इसको अंदर लो। वो वक्ता तुरंत खड़ा हो गया, अरे ये 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 ठीक नहीं है। बोले मैं कथाकार, इतना बड़ा वक्ता, इतना गुणगान, इतनी कथा करता था, मुझे तुमने अंदर नहीं लिया और बीएसटी बस के ड्राइवर को अंदर ले लिया। बोले इसके पीछे कारण है। बोले कारण क्या है जल्दी बताओ। बोले तुम कथा करते थे ना तो सब लोग सोते थे। ध्यान रखना हम लोग वेटिंग में न चले जाए कहीं। बोले तुम कथा करते थे तो इतने बोर होते थे सब लोग सोते थे, और ये बीएसटी बस का ड्राइवर इतनी जोर से ब्रेक मारता था जितने भी पैसेंजर थे, हे राम हे राम हे राम, ये किसी को सोने नहीं देता था। तुम्हारी कथा में सोते थे और ये किसी को सोने नहीं देता था और जगह जगह कर राम का नाम बुलाता था, इसलिए इसको पहले। तो शुणवंती गायंती, सुनने वाले पहले जाते हैं और गाने वाले बाद में जाते हैं, और गाने वाले भी उनकी कथा में लोग सोए नहीं तो खैर जो भी है। गृणंती, जो लोग भगवत कथा को, भगवत नाम लीला को गुनगुनाते हैं, वे भी भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। कहते हैं स्मरणती, जो लोग स्मरण करते हैं भगवान की लीला का, वे भी भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। लेकिन अंत में कुंती कहती है कि यहां तक कि जो लोग भगवान की कथा का अनुमोदन करते हैं, अनुमोदन जानते हैं, मन लो आज रविवार का दिन है, किसी को कोई काम आ गया, कहीं पर चले गए, प्रवचन सुनने नहीं आ पाया, लेकिन जहां गए हैं वहां जाकर कम से कम उनके मन में यह हो कि यार मैं गया होता तो अच्छा था, वहां जो लोग कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, वो कितने अच्छे हैं। इसे कहते हैं अनुमोदन करना। सुना नहीं, बोला नहीं, स्मरण नहीं किया, कहीं दूर है लेकिन वहां रहे रहे अनुमोदन भी कर दिया कि लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, तब भी वो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। कहई सुनही अनुमोदन करे। लेकिन हाय रे कलयुग का दुर्भाग्य, कलयुग की बुद्धि और मन ऐसा है कि कम से कम न सुन सकते हैं, न बोल सकते हैं, अनुमोदन भी नहीं कर सकते हैं। यहां रास्ते से, रोड से निकलते हैं लेकिन अंदर नहीं आते हैं, खुद नहीं आते लेकिन सोचते हैं ये क्या लगा रखा है। तो इस प्रकार से भगवत कथा कलयुग के जीव के लिए परम मंगलकारी है। इसलिए ये कथा जो है, कथा के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। आइए फिर से केवट जी बार बार भगवान कह रहे हैं कि हमें नौका में बिठा लो, केवट ना कह रहे हैं। अब भगवान दोनों हाथ जोड़कर केवट को प्रणाम प्रार्थना कर रहे हैं और यहां लखन लाल लाल पीले हो रहे हैं। लखन लाल का हाथ बार बार जा रहा है पीछे कि अभी बाण निकालकर इसको मार दूं, खुद नौका चला के चला जाऊं। और केवट की नजर लखन के ऊपर गई। बोले लखन अपने तर्कस में हाथ डाल रहा है, आज लखन अपने बाणों से मुझे मार डाले, मैं शहीद होने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्रभु आपको मैं मेरी नौका में नहीं बिठाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन मेरी नौका में आपको नहीं बिठाऊंगा। तब भगवान ने लक्ष्मण को शांत किया, बोले खून खराबा ठीक नहीं है यहां पर, तो फिर केवट कोई उपाय है आपके पास? बोले हां एक उपाय है। बोले क्या उपाय? प्रभु आपके चरण में जो रज है उसे धोना पड़ेगा। प्रभु ने कहा ठीक है मैं गंगा में धोकर आता हूं। बोले आप नहीं, आप राजा के लड़के हो और राजा के लड़के खुद चरण कैसे धोते हैं क्या पता, चरण मैं धोऊंगा। बोले ठीक है धोना है तो जल्दी करो, जल्दी धो लो। केवट ने कहा रुको मैं घर पर जाकर आता हूं। केवट दौड़कर घर पर गया और भगवान के चरण धोने के लिए लकड़े का पात्र, लकड़े की थाली और लकड़े का जग लेकर आया। अब आचार्यों ने लिखा है लकड़े का क्यों? केवट को कंफर्म करना था कि अभी भी इसमें चरण रज से ये लकड़ा स्त्री नहीं बन जाता है ना, एक्सपेरिमेंट करना था, इसलिए लकड़े का लेकर आया। आया और प्रभु को कहा कि बैठिए, आपके चरण रखिए। केवट अपने हाथों से भगवान के चरणों को धो रहे हैं। उतने में केवट को याद आया कि ये सौभाग्य तो मुझे मिल रहा है लेकिन पत्नी और बच्चे घर पर हैं। कहा प्रभु आप खड़े रहिए, मैं जरा जाकर आता हूं। तुरंत दौड़ कर गया, पत्नी और बच्चों को लेकर आया। चार पांच लाइन में आए बच्चे और पत्नी को कहा चलो तुम धो, बच्चों को कहा चलो तुम धो। पत्नी ने चरण धोया, बच्चों ने चरण धोया और चरण धोने के बाद केवट ने चरणामृत ग्रहण किया, पत्नी को पिलाया, बच्चों को पिलाया, पी पी कर सबके ऊपर छिड़का। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो कार्य बड़े बड़े देवता स्वर्ग में बैठे बैठे नहीं कर पाए, वह कार्य एक गांव में रहने वाले गवार ने कर दिया है। देवता लोग मन में अफसोस करते हैं, अरे धिक्कार है हमारे ज्ञान को, धिक्कार है हमारे ऐश्वर्य को, धिक्कार है हमारी प्रतिष्ठा को, कि जिस ज्ञान प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य के कारण आज केवट जो साक्षात भगवान के चरण को धो रहा है, उस भगवान के चरणों का दर्शन भी हमको नहीं करने मिल रहा है। धन्य है केवट, देवतागण पुष्पों की वृष्टि करने लगे। और गोस्वामी जी कमेंट देते हैं कि केवट भगवान श्री रामचंद्र को गंगा पार कराए, उनकी पहले तो खुद, उनकी पत्नी, उनके बच्चे और उनके पितरों को भवसागर से पार करा दिया है? भवसागर से पार करा दिया केवट ने, सारा भगवान का चरण धो दिया, मल मल के धो दिया चरण। और अब केवट कहते हैं ठीक है प्रभु, तो बैठ जाइए कंधे पर। लखनलाल बोले देखिए, चरण धोने की बात हुई थी, कंधे पर बिठाने की बात नहीं हुई थी। केवट ने कहा ठीक है चलो, और चलोगे मिट्टी लगेगी तो फिर से धोना पड़ेगा। अरे बाप रे, दो घंटा ऐसे ही चला गया, फिर से मिट्टी लगेगी तो फिर से धोना पड़ेगा। लक्ष्मण ने कहा ठीक है बिठा लो कंधे पर। चरण धो लिए, चरण तक पी लिया और अपने कंधे पर बिठा लिया। भगवान श्री रामचंद्र को कंधे पर बिठाकर नौका में सवार कराया। लखनलाल बैठे, देवी सीता बैठी, केवट ने नौका चलाई। नौका चलाई चलाई चलाते चलाते अब जेन्युइन तरीके से, हमारी भाषा में इज्जत से, यदि यहां से वहां जाने में 2 या 5 मिनट लगती है, यहां आधा घंटा बीत गया। केवट कभी राइट मारता है, कभी लेफ्ट मारता है, कभी गोल गोल घुमाता है, और लक्ष्मण जी लाल पीले हो रहे हैं। भगवान बार बार लक्ष्मण को समझाते हैं, लखन यहां खून खराबा ठीक नहीं है। तब आधा पौना घंटा बीत गया, तब भगवान श्री रामचंद्र से नहीं रहा गया। बोले केवट अब जल्दी पार कराओ, इतनी देरी क्यों कर रहे हो? केवट ने कहा बस, जब भगवान ने कहा जल्दी करो जल्दी पार कराओ, केवट ने कहा बस प्रभु जी बस, प्रभु आप इतने में थक गए, हम लोग 84 लाख के चक्कर में घूम घूम कर फंस फंस कर यहां पर आए हैं और तुम आधे घंटे के चक्कर में थक गए। प्रभु मैं आपको यही एहसास कराना चाहता हूं कि आप आधे घंटे के चक्कर में फंस गए, हम 84 के चक्कर में फंसे हुए हैं। जैसे आप मुक्त होना चाहते हो वैसे हम भी मुक्त होना चाहते हैं, प्रभु जल्दी कीजिए। यह सिद्धांत देकर केवट ने बहुत जल्द नौका पार कराई। केवट स्वयं उतरे, प्रभु को उतारा, देवी सीता को उतारा, लखनलाल उतरे। लेकिन जैसे ही राम लक्ष्मण जानकी ये तीनों उतरे तो भगवान ने कहा केवट, भगवान श्री रामचंद्र के मन में संशय हुआ कि केवट ने बहुत मजदूरी की है, बहुत मेहनत की है, तो मेहनत करने वाले को मेहनत का फल मिलना चाहिए। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र तो तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वियों के वेश में थे और उदासीन अवस्था में थे, कुछ नहीं था। देखिए रामायण का अद्भुत सिद्धांत, उस समय प्रभु के पास कुछ नहीं था, लेकिन पति के मन की हलचल को पत्नी सीता ने देख लिया। बोले पतिदेव कुछ करना चाहते हैं, केवट को कुछ देना चाहते हैं, यह बात सीता देवी के मन में आ गई। और तुरंत सीता देवी ने सोचा प्रभु संकोच कर रहे हैं। उस समय सीता के हाथ में एक अंगूठी थी, सोने की मुद्रिका थी, वह सोने की मुद्रिका को निकालकर किसी को पता न चले पीछे से भगवान रामचंद्र के हाथ में दे दी, प्रभु जी दे दीजिए। इसे कहते हैं स्त्री धर्म भक्तों, इसे कहा जाता है वास्तव में पत्नी। सती अनसुया ने देवी सीता को उपदेश देते हुए कहा है कि सीते, इस संसार में 4 लोगों की परीक्षा तब होती है जब आपत्ति का समय आए, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत काल परचियो चारी। एक भक्त की परीक्षा ऐसे साधारण समय पर नहीं होती है, जब कठिन समय आए धीरज की परीक्षा, मित्र की परीक्षा और स्त्री की परीक्षा तब होती है जब विपत्ति का आपत्ति का समय आए तो देवी सीता ने भगवान श्री रामचंद्र के हाथ में दे दिया। और भगवान भी देखिए एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं, नहीं तो भगवान चाहते तो केवट को कुछ न देते तो भी कुछ नहीं बोलता, लेकिन भगवान ने मनुष्य समाज को एक बहुत सुंदर सिद्धांत दिया, कभी भी किसी व्यक्ति को दूसरों से मुफ्त का काम कराने की भावना नहीं रखनी चाहिए। कभी कभी माताजियां सब्जी मार्केट में जाती हैं, सब्जी मंडी वाला बेचारा टमाटर का पैसा लेना भूल गया तो घर पर आकर डांस करती, यार आज तो फ्री में मिल गया। प्रभु जी लोग कभी कभी रिक्शा वाले भूल से 50 का छूटा देने के बदले 100 रुपया दे देते हैं तो घर पे आके खुश हो जाते हैं, यार आज तो डबल मिल गए। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र बहुत सुंदर सिद्धांत दे रहे हैं, कभी भी जीवन में किसी की गलत कमाई या किसी से व्यर्थ मुफ्त में काम नहीं कराना चाहिए, किसी भी व्यक्ति की मजदूरी का फल देना चाहिए। और शास्त्र का सिद्धांत है, हम कितना भी प्रयास करें कितनी भी मेहनत करें लेकिन इस संसार में जब तक किसी के ऋण में फंसे हुए हैं तब तक हम भगवान के धाम में नहीं जा सकते। यक्ष के 100 प्रश्न में से एक प्रश्न युधिष्ठिर महाराज को यह भी था, इस संसार में सबसे बड़ा दुखी कौन है? तब युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर में कहा था, इस संसार में जो ऋण में फंसा हुआ है, जो जिसके मस्तक पर किसी का ऋण है वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है, कभी भी किसी के ऋण में नहीं रहना चाहिए। और ऋण से मुक्त होने के लिए कभी भी किसी से कुछ मुफ्त में नहीं लेना चाहिए। और ऋण से मुक्त होने के लिए तो भागवत में तो क्लियर कहा है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किं करो नायम ऋणी च राजन। भगवान की शुद्ध भक्ति यदि हम करते हैं तो भगवान की शुद्ध भक्ति करने वाला व्यक्ति किसी के ऋण में नहीं रहता है। तब जानते हैं भक्त लोग क्या कहते हैं, अभी हमको कुछ करने की जरूरत, माता पिता की सेवा न करे, कुछ न करे, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, भागवत में लिखा है भक्ति करने वाले को कुछ करने की जरूरत नहीं। कभी कभी श्राद्ध का समय होता है, बोले भक्तों को श्राद्ध की क्या जरूरत है, लेकिन भक्तों को थोड़ी ध्यान से आंखें खोलकर ठीक से पढ़ना चाहिए कि वह श्लोक किसके लिए। हां, एक भक्त को, एक भक्त किसी भी ऋण में नहीं रहता है, न पितृ के ऋण, न देवता के ऋण में, न गुरु के ऋण में, लेकिन कौन सा भक्त? देवर्षि भूताप्त निणाम पितृणाम न किंग करो नायम ऋणी च राजन। हे राजन, वही व्यक्ति जो सर्वात मनाय शरणम शरण्य गत मुकुंद परिहर्त्य कर्तम, जो सर्व रूप से, जो 100% पूर्ण रूप से भगवान मुकुंद, भगवान कृष्ण को शरणागत हो चुका है, उस वह व्यक्ति कोई ऋण में नहीं रहता है। ये तो हम लोग आए राम गया राम भक्ति करते हैं और सोचते हैं सभी ऋण से मुक्त हो गए हैं और इसीलिए हमारे सिर पर दुख आ रहा है। समस्त ऋण से मुक्त होना चाहिए शुद्ध भक्ति के द्वारा या उस ऋण को चुकाकर। भगवान ये आदर्श बता रहे हैं और देवी सीता एक पत्नी होने का आदर्श बताती है। आजकल की स्त्रियां, पति मानो किसी को दान देना भी चाहता हो, बोले मुझे साड़ी लेकर तो उनको दान देने की क्या जरूरत है। पति जब धर्म का काम कर रहा हो और उस धर्म के काम में सहयोग दे, सहायता करे, उसे धर्म पत्नी कहा जाता है। तो पत्नी को चाहिए पति को धर्म में सहयोग करना चाहिए। देवी सीता ने वह मुद्रिका दे दी, भगवान श्री रामचंद्र उस मुद्रिका को लेकर केवट को दे रहे हैं। केवट ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक संत बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, केवट ने कहा प्रभु आपने कभी सुना एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से पैसा लेता है? मान लो कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन है और कोई MBBS है, तो MBBS को जब कोई हाथ पांव टूट गया तो ऑर्थोपेडिक के पास जाता है और उसको सर्दी बुखार हो गया तो इसके पास फिटूस हो जाता है। आपने कभी सुना कोई डॉक्टर किसी डॉक्टर से पैसा लेते? बोले नहीं। आपने कभी सुना कोई हजाम किसी हजाम से पैसा लेता है? बोले नहीं। बोले एक बिरादरी वाले, एक काम करने वाले कभी अपनी बिरादरी वालों में से पैसे नहीं लेते। बोले प्रभु आप और मैं दोनों एक ही बिरादरी के, हजाम हजाम से पैसा नहीं लेता, डॉक्टर डॉक्टर से पैसा नहीं लेता, तो मैं और आपके बीच में ये पैसे का व्यवहार होना ही नहीं चाहिए। तब लक्ष्मण जी क्रोध में होकर बोले तू है? एक साधारण केवट राम के साथ अपनी तुलना कर रहे हैं? बोले हाँ। बोले इनका और मेरा धंधा एक ही धंधा है, एक ही बिजनेस है। बोले कैसे एक बिजनेस है? केवट ने कहा मेरा काम है गंगा पार कराना और इनका काम है भवसागर पार कराना। तो देखिए प्रभु, मैंने मेरा काम कर दिया है, मैंने आपको गंगा पार करा दिया, अब आपका काम बाकी है, आप मुझे भवसागर पार करा दो। कृष्ण भक्त बड़ो चतुर है, कृष्ण के भक्त जो होते हैं बड़े चतुर होते हैं। सर्वे गुणे तत्र समा सतेश्वरा, उनके अंदर सभी देवी गुण आ जाते हैं। तो बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। वास्तव में यह है केवट की शुद्ध भक्ति, चाहे रामायण हो, गीता हो या भागवत हो, जहां शुद्ध भक्ति का निरूपण होता है वहां पर एक भक्त भगवान से कोई कामना नहीं करता है, कोई आशा नहीं रखता है। भगवान चाहे प्रकट भी हो जाए, प्रकट होकर भगवान कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता है। आज भगवान कह रहे हैं ये केवट कुछ तो मांगो है? तब केवट बार बार एक ही चीज कहते हैं, अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोही जो कछु देवा, सो प्रसाद में शीर धरी लेवा। बार बार भगवान जब केवट से कहते हैं केवट कुछ मांग लो, कुछ ले लो, तब केवट कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। आप नाथ हो, आप स्वामी हो, मैं समझ रहा हूं आप कुछ भी देने को समर्थ हो, लेकिन इस दास को कुछ नहीं चाहिए है? नाथ आज मैं काहू न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, बहुत काल में कीनी मजूरी है। हे नाथ, हे प्रभु, मैं अनंत अनंत जन्मों से मजदूरी करके आया हूं, आ रहा हूं, अनेक जन्म लिए और अनेक जन्मों में मैंने बहुत मेहनत और मजदूरी की, लेकिन अनंत जन्मों की मजदूरी का फल आज मुझे प्राप्त हो गया, आपका दर्शन हो गया, अब मुझे क्या चाहिए है? इस संसार में जिस व्यक्ति को आपका दर्शन हो जाता है उस व्यक्ति के लिए क्या बाकी रहता है, है? नाथ आज मैं का हूं न पावा, आज मैंने क्या प्राप्त नहीं किया है। अरे जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ध्यानी हजारों जन्म तक ध्यान करते हैं, करोड़ों जन्म तक योगी योग करते रहते हैं, परंतु उसके योग और ध्यान में जिस भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, वह साक्षात भगवान का दर्शन कर लिया, उनका चरणरथ ले लिया, उनको अपनी नौका में बिठा दिया, अब मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। यह है शुद्ध भक्ति। भक्तों के जीवन में ये बात निश्चित रूप से, दृढ़ रूप से जाननी चाहिए कि हर समय भगवान के सामने खड़े खड़े भीख ही नहीं मांगनी चाहिए। आज कोई भी व्यक्ति भगवान के सामने जाता है तो ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, सीधी मेरे घर पर आवे, कष्ट मिटे तन का, पड़ोसी में तो भूल से भी न जाए, इरादा ऐसा होता है, सीधे मेरे पास आए, मुझे ही सुख मिले, भगवान से सुख की कामना करते हैं। लेकिन एक गौड़ीय भक्त भगवान से सुख नहीं, भगवान से दुख की कामना करता है। आप सब जानते हो जब भगवान की आरती होती है और हम लोग आरती लेते हैं तो ये क्या भाव है, आरती का अर्थ क्या होता है? हम लोग हजारों बार आरती को ऐसे तीन बार घुमा कर ऐसे सिर पर लेते हैं, इसका अर्थ क्या है? ये आर्त शब्द का अर्थ आप सब जानते होंगे, गीता को पढ़ने वाले चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन, आर्त अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञान, वहां पर शब्द आया है आर्त। तो आरती में आरती शब्द जो है आर्त शब्द से बना है और आर्त का अर्थ होता है दुख, है ना, आर्त का अर्थ होता है दुख। जब एक पुजारी भगवान की सेवा करते हैं तो वात्सल्य भाव में कि मेरे कृष्ण को देखने के लिए हजारों लोग आते हैं, सब लोग अपनी नजर डालते हैं, तो कृष्ण को किसी की नजर न लग जाए, इसलिए एक मां एक वात्सल्य भाव में उससे आरती उतारती है, बलैया लेती है। तो इस प्रकार से वो आरती भाव क्या होता है, कि कृष्ण के ऊपर जो नजर लगी है उसको मैं इसमें ले लेती हूं। और फिर भक्तगण क्या करते हैं, वो जो कृष्ण के दुख हैं, आर्त हैं, वो आर्त हम हमारे सिर पर ले लेते हैं। कृष्ण दुखी नहीं होने चाहिए, हम कृष्ण का आर्त हम ले लेते हैं। ये है आरती का भाव। और उस आरती के लिए तो कुछ लोग झगड़ा करते हैं। तो इस प्रकार से इस भगवान से सुख की कामना न रखते हुए भगवान के दुख को दूर करने की भावना, यह है शुद्ध भक्ति। और होता क्या है, जब हम वह आरती लेते हैं इस भाव से कि हम कृष्ण के सारे दुख को ले लेंगे हमारे ऊपर, लेकिन कृष्ण तो स्वप्न में भी दुखी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के समुद्र है, जिसका शरीर ही आनंद से बना है, जो सच्चित आनंद के मूर्तिमान विग्रह है, उसमें लेश मात्र भी दुख आ नहीं सकता। अतः हम जब वह आरती लेते हैं यह सोच करके कृष्ण का दुख लेते हैं, लेकिन वास्तव में होता क्या है, वह सुख हमें प्राप्त हो जाता है जो सुख भगवान के हृदय में स्थित है, भक्त सुखी हो जाता है। तो इस प्रकार से एक शुद्ध भक्त भगवान से कहता है कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर चाहे केवट हो या श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर हो, न नाक पृष्ठम न च पारमिष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्ये, न मुझे इस पृथ्वी का राजा बनना है, न स्वर्ग का राजा बनना है, न ब्रह्मलोक का, न ब्रह्मांड का राजा बनना है। हे कृष्ण, यदि आपको मुझे देना ही है तो आपका दर्शन दीजिए। फिर चाहे प्रहलाद हो, चाहे ध्रुव हो, जो भी शुद्ध भक्त है भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं, भगवान को ही मांग लेते हैं। भगवान से मांगना ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति भगवान से नहीं है, भगवान को ही मांग लेता है। लक्ष्मी के नाथ, अनंत कोटि लक्ष्मी के नाथ कृष्ण को ही अपने वश में कर लेता है। और कभी कभी क्या होता है, भक्ति के मार्ग में रूप गोस्वामी भक्ति सामृत सिंधु में वर्णन करते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में आनुषंगिक फल मिलते हैं। और वो आनुषंगिक फल क्या है, पूजा, प्रतिष्ठा, धन। हम भक्ति कर रहे हैं और हमें धन मिल रहा है तो समझना चाहिए ये भक्ति का वास्तविक फल नहीं। भक्ति का वास्तविक फल तो प्रेम है, कृष्ण प्रेम। भक्ति करते हुए धन मान प्रतिष्ठा मिल रहा है तो ये भक्ति का आनुषंगिक फल है। और होता क्या है कि हम लोग भक्ति करते हुए जब मान प्रतिष्ठा और धन मिलता है तो उस मान प्रतिष्ठा और धन में ही फंस जाते हैं और जो हमारा लक्ष्य है वो छूट जाता है। परंतु हमें सतर्क रहना है, माया 2400 घंटा तैयार है संसार के जीव को और विशेष करके भक्तों को। जब एक भक्त भजन करता है तो भजन करते समय, भगवान का नाम लेते समय क्या करता है, भगवान को पुकारता है। तो उस समय माया अपने ऐश्वर्य देती है। जैसे एक लड़का होता है, सोया हुआ होता है, अपनी मां को बुलाना चाहता है, वो चाहता है कि मां मेरे पास आए, तब वो लड़का रोता है। तो सबसे पहले मां क्या करती है, एक खिलौना उठाकर बच्चे के पास छोड़ देती है कि बच्चा इससे खेलेगा। कुछ बच्चे होते हैं वो खिलौने से संतुष्ट हो जाते हैं, रोना बंद कर देते हैं है? कुछ भक्त होते हैं है? कि रोते हैं, भजन करते हैं, शुरू शुरू में बहुत भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, कृष्ण के लिए रोते हैं, लेकिन थोड़ा धन ऐश्वर्य मिल जाता है, बोले ठीक है, हो गया है? हमारा काम, लक्ष्य चूक जाते हैं। लेकिन कुछ लड़के होते हैं वो खिलौना मिलने के बाद भी रोते रहते हैं, तब मां उससे अच्छा खिलौना लाकर देती है। तब भी वो लड़का रोता रहे, तब मां सोचती है कि ये अब बंद नहीं होगा, वह खुद उस बच्चे के पास जाती है और उसको गोद में बिठा देती है। इसी प्रकार जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवत कथा सुनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो पहले माया कुछ खिलौना दे देती है, कुछ मान प्रतिष्ठा धन है? लेकिन हम उस खिलौने को छोड़ दे, प्रथम में ही उपशाखा करें ये छेदन, चैतन्य महाप्रभु रूप शिक्षा में कहते हैं कि उस मान प्रतिष्ठा को उखाड़कर फेंक दे, तब माया दूसरा खिलौना देती है, धनम। फिर हम कर लगा दे न धनम न जन्म न सुंदरी। जब बार बार माया का यह प्रभाव और खिलौना मिलता है और हम उसे ठुकराते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, हमें कृष्ण से कुछ नहीं, हमें कृष्ण ही चाहिए, कृष्ण ही चाहिए, तो फिर अंत में भगवान का सिंहासन डोलने लगता है और साक्षात भगवान उतरते हैं और अपने भक्तों को अपने साथ में लेकर चले जाते हैं। लेकिन भगवान की प्राप्ति करने के लिए माया के ये प्रभाव आएंगे, इसलिए भक्ति में आना बहुत आसान है भक्तों, भक्ति से निकल जाना भी बहुत आसान है। 50 साल से कोई भक्ति करता है लेकिन भक्ति को छोड़ने में 5 सेकंड नहीं लग सकती है, भक्ति से गिरने में 5 सेकंड नहीं लग सकती है। ऐसा नहीं 50 साल से भक्ति करते हैं, परंतु भक्ति में टिक जाना यह बहुत मुश्किल है। और भक्ति में टिके रहेंगे कब? जब हम भगवान के चरण को पकड़ कर रहेंगे। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम, हे कृष्ण आपको मुझे सुख देना है सुख दो, दुख देना है दुख दो, नरक में रखना है तो नरक में रखो, लेकिन मैं आपका हूं, मैं आपका बना रहूंगा, मैं आपके चरण को और आपकी भक्ति को कभी नहीं छोड़ूंगा। जब ये भाव आ जाएगा समझ लेना चाहिए हम सब भक्त की कोटि में। तो ये केवट प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज हमारे आदर्श हैं। इस प्रकार से इन भक्तों की लीला से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और इन कथाओं को सुनकर हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न करना, भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न करना और हृदय को पवित्र करना चाहिए। आप सब भक्तों का धन्यवाद। अपना कीमती समय निकालकर बड़ी श्रद्धा से बड़े प्रेम से इस कथा को सुने। कथा में कुछ त्रुटि रह गई हो क्षमा कीजिएगा। सबके चरणों में कृपा और आशीर्वाद की प्रार्थना करते हुए हरे कृष्ण।